अरमान ने आयशा को मेंटल असाइलम में एडमिट करवा दिया था। उस वक्त से वो वहीं पर एडमिट थी, कोई उससे मिलने तक नहीं आता था। मालविका भी जेल में होने के कारण आयशा पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। इतने महीनों में पहली बार आयशा से मिलने उर्वशी पहुंची थी। उर्वशी ने आयशा का नाम पुकारा तो आयशा ने नज़रें उठाकर ऊपर देखा। उर्वशी को अपने सामने देखकर आयशा जोर से हंसी और फिर खतरनाक अंदाज में बोली, तो आपको मेरी ज़रूरत पड़ ही गई सासू माँ। वैसे उस टाइम कहाँ थी आप जब मुझे पागल साबित करके यहाँ ज़बरदस्ती भेज दिया गया था? आपके बेटे ने भी मुझसे तलाक ले लिया, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, चली जाइए यहाँ से, नफ़रत करती हूँ मैं आप सबसे। आयशा की बातों से साफ था कि उसकी याददाश्त बिल्कुल ठीक थी। इतना वक्त पागलखाने में बिताने के बाद भी उसका मानसिक संतुलन ठीक था। उर्वशी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम अच्छे से जानती हो उस समय हालात कैसे थे, बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि तुम राधिका सिंघानिया की बेटी नहीं बल्कि मालविका की बेटी हो। आपको बता देती तो आप मेरी शादी नक्श से कभी नहीं होने देती, आयशा ने जवाब दिया। वो उठकर उर्वशी के पास आ गई। उर्वशी की नज़रें झुक गई थी। आयशा का कहना सही था, अगर उर्वशी को पहली पता होता कि वो मालविका और आदर्श की नाजायज बेटी है तो वो कभी भी उसे नक्श के करीब तक नहीं जाने देती। उर्वशी की झुकी नज़र देखकर आयशा ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब मेरा अंदाज़ा सही था, राजवंश फैमिली सच में बहुत सेल्फिश है, चली जाइए यहाँ से, अब मैं आपकी किसी काम की नहीं हूँ। उर्वशी ने आयशा की तरफ देखा और नरमी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, जो भी हुआ मैं सब भूलने के लिए तैयार हूँ और यही चाहती हूँ कि तुम नक्श की ज़िंदगी में वापस लौट आओ। आयशा ने आह भरते हुए कहा, क्या नक्श ऐसा चाहता है? क्या लगता है मैं सच में पागल हूँ जो इस पागलखाने के अंदर रह रही हूँ? उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ रखा है और उनके आगे किसी की कोई औकात नहीं है। वो अरमान सिंघानिया, उसने मुझे पागल साबित कर दिया। बोलते हुए आयशा की आवाज़ कांपने लगी और वो रोने लगी थी। ऐसा नहीं था कि आयशा से छुपा हुआ था कि वो किस वजह से आज इस जगह पर कैद है, बस फ़र्क इतना था कि सच जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने ये अंजाम इशिका के लिए तय किया था, लेकिन वो भूल गई थी कि उसने इशिका की जगह ली है। ये सच कभी ना कभी सामने आना ही था। उर्वशी ने आयशा को तसल्ली देते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगी, बाहर बहुत कुछ हो गया है, तुम ही थीं जो मेरा साथ देती थी, नकुल तो पहले ही मेरी नहीं सुनते थे, ऊपर से नक्श भी उस इशिका के पीछे पागल हो गया है। मैंने सुना था वो मर गई है, क्या वो जिंदा है? आयशा ने हैरानी जताते हुए पूछा। पागलखाने में भी उसे बाहर की थोड़ी बहुत खबर मिल जाती थी, उसमें एक न्यूज़ ये थी कि उसकी बहन इशिका सिंघानिया इस दुनिया में नहीं रही है, तो दूसरी खबर उसे आदर्श के मरने की मिली थी। इशिका के मरने की खबर सुनकर आयशा उस रात सुकून से सोई थी। वहीं आदर्श के मरने पर उसे बुरा ज़रूर लगा था, पर आदर्श ने उसे इस तरह अकेला छोड़ दिया था ये सोचकर उसने अफसोस भी नहीं जताया। उर्वशी ने आयशा की बात पर हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ वो जिंदा है और लगता भी नहीं इतनी आसानी से मरने वाली है। सोचा था उसके मरने के बाद अभिमन्यु दुख में डूब जाएगा और हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। उस लड़की के पीछे वो दिल्ली गया और वहाँ भी काफ़ी सारी डील्स क्रैक कर ली। आयशा, अब तुम ही हो जो वापस आकर मेरी मदद कर सकती हो। और मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ? आप अच्छे से जानती हैं आपके बेटे ने मुझे तलाक दे दिया है, इस वजह से मैं राजवंश हाउस वापस नहीं आ सकती। अब तो मैं जायज़ औलाद भी नहीं रही जो उस पर ताना मार सकूँ या उसे लोगों के सामने नीचा दिखा सकूँ। मीडिया के सामने सच आगे आ गया था, मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रही। आयशा ने सच्चाई और वशी के सामने रख दी, उसकी आंखों में आंसू थे। आयशा भी इस कैद से आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि उसकी ज़िंदगी बाहर एक तरह से ख़त्म हो चुकी थी। न परिवार में उसका कोई बचा था और ना ही अब उसका कोई साथ देने वाला था। अपनों के नाम पर उसके पास सिर्फ मालविका बची थी जो जेल में थी, ऊपर से आयशा उसके साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहती थी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अभी भी एक उम्मीद है, राधिका सिंघानिया ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला था, अगर तुम उनके सामने सुधरने और पछतावे का ड्रामा करो तो वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगी और अपनी बेटी की तरह प्यार देंगी। पहले उन्हें लगता था इशिका मालविका की बेटी है, फिर भी वो उनके साथ नरमी से पेश आती थी, उर्वशी ने आयशा को समझाते हुए कहा, उनका आइडिया काफ़ी अच्छा था। आयशा ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, लेकिन राधिका सिंघानिया यहाँ क्यों आएंगी? उन्हें यहाँ तक भेजना मेरा काम है, बस तुम बाहर निकलने के बाद मुझे मत भूल जाना, थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगी, उर्वशी ने जवाब दिया। उर्वशी की बातों ने आयशा को भी कुछ हद तक उम्मीद दी थी, उसने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना होगा? इशिका को जान से मारना है, उर्वशी ने दृढ़ता से कहा। उसकी डिमांड सुनकर आयशा को एक पल के लिए भी हैरानी नहीं हुई, कहीं ना कहीं वो भी इशिका को जान से मारना चाहती थी। उसने बिना किसी बहस के उसकी बातों पर हामी भर दी थी। उर्वशी के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। उसने आयशा का हाथ सहलाते हुए कहा, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? कुछ दिनों में तुम्हें बाहर निकलना है। मैंने सुना कि तुम ठीक से खाती पीती नहीं हो। खाना खाया करो ताकि थोड़ा ठीक हो जाओ। बाहर निकलने से पहले मैं तुम्हारे लिए ग्रूमिंग का इंतजाम कर दूंगी। बोलते हुए वो आयशा को गौर से देख रही थी। आयशा काफी दुबली पतली हो गई थी। ऊपर से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे। अगर मैं इनका दिया खाना खाती होती तो अब तक सच में पागल हो जाती। ये लोग खाने में मुझे दवाइयां मिला कर देते हैं। एक दो दिन खाना खाया था तो हालत बहुत खराब हो गई थी। अब मैं उतना ही खाती हूँ जिससे जिंदा रह सकूं और पागल भी ना हो जाऊं, आयशा ने बताया। ठीक है, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम भी करवा कर जाऊंगी। बस राधिका तुमसे मिलने आए तो संभाल लेना, उर्वशी ने जवाब दिया और फिर वहां से चली गई। उसके जाते ही आयशा ने राहत की सांस ली। इतने दिनों में पहली बार उससे कोई मिलने भी आया था और उसे एक उम्मीद की किरण भी देकर गया था। वहीं उनसे अलग इशिका हॉस्पिटल में मौजूद थी। अभिमन्यु की सर्जरी हुए पूरे 30 घंटे बीत चुके थे। अब वो पूरी तरह खतरे से बाहर भी था और उसे लगभग 15-20 मिनट पहले होश भी आ चुका था। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। इस दौरान इशिका केशव के साथ उसके रूम के बाहर थी। उसे डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतजार था ताकि वो अभिमन्यु से मिल सके। इशिका को परेशानी में इधर उधर चहलकदमी करते देखकर केशव ने उसके पास आकर कहा, क्या सच में तुमने यहाँ रुकने का सोच लिया है? हम यहाँ से आराम से निकल सकते हैं और वो पार्थ रायचंद कुछ नहीं कर पाएगा। पार्थ से मिलने के बाद इशिका ने केशव को सब कुछ बता दिया था। केशव उसके यहाँ रुकने के फैसले से खुश नहीं थे, पर वो इशिका पर दबाव भी नहीं डाल रहे थे। इशिका ने उनकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हाँ जानती हूँ, कोई प्रेशर नहीं है और वो मुझ पर दबाव डाल भी नहीं सकता, लेकिन मैंने कमिटमेंट दी है। डॉक्टर पार्थ रायचंद एक काबिल डॉक्टर हैं। मैंने यहाँ के स्टाफ से सुना था कि वो काफी लोगों की मदद भी करते हैं। जरूर उनका प्रोजेक्ट भी जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए ही होगा। मुझे उनकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है मिस्टर सिंघानिया, केशव ने उसकी बात पर हामी भरी। वो दोनों बातें कर रहे थे कि उन दोनों को दूर से डॉक्टर पार्थ हाथ बांधे देख रहे थे। उनके चेहरे के भाव सख्त थे।
केशव या इशिका दोनों में से कुछ बोलता उससे पहले पार्थ ने सख्त आवाज में कहा, वेल डन डॉक्टर अनामिका, वरना मुझे ये नहीं सुनना था कि मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए धमकी दे रहा हूँ। तुम्हारे हस्बैंड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जाकर मिल सकती हो। एंड वन मोर थिंग, उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट भी देख लेना। इशिका ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और तुरंत ही अंदर चली गई। आखिर उसे अभिमन्यु से मिलने का कब से इंतजार था? बाकी स्टाफ भी बाहर आ चुका था। अब कमरे में इशिका और अभिमन्यु ही रहे थे। इशिका को अपने सामने देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इशिका जल्दी से उसके पास गई और अभिमन्यु का हाथ पकड़कर नम आंखों से कहा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। इतनी आसानी से मेरी जान नहीं निकलने वाली है मिसेज राजवंश। फिलहाल तो मुझे अपनी दादी से भी मिलना है और उनका रिएक्शन देखना है जब उन्हें पता चलेगा कि वो परदादी बनने वाली हैं, अभिमन्यु ने बिल्कुल धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर इशिका के पेट पर रखकर कहा, मेरे चक्कर में कहीं तुमने इसको तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर दिया ना? वीक लग रही हो, खाना खाया तुमने? ऐसी हालत में भी उसे इशिका की ही फिक्र थी। कुछ ख्याल ही नहीं रहा, मुझे आदत हो गई है तुम्हारी। जब तक तुम मेरी केयर नहीं करती मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, इशिका ने मुस्कुराकर कहा। याद नहीं रहता तो याद रखने की आदत डाल लो मिसेज राजवंश, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। अच्छा बताओ, मुझे डिस्चार्ज कब मिलने वाला है? मैं और इस अजीब जगह पर नहीं रहना चाहता हूँ, अभिमन्यु ने पूछा, जिस पर इशिका चुप हो गई थी। वो अभिमन्यु की ऐसी हालत में उसे नहीं बता सकती थी कि उसे डॉक्टर रायचंद का प्रोजेक्ट पूरा करके देना है। वहीं दूसरी तरफ पार्थ इस वक्त अपने केबिन में किसी से कॉल पर बात कर रहा था। उसने हल्के गुस्से में कहा, बहुत हो गया, अब मुझे मेरा हक चाहिए मॉम। वैसे मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, पार्थ रायचंद कभी अपने हिस्से की चीज़ किसी और को नहीं देता। अब वक्त आ गया है जब उन्हें मेरी सच्चाई पता चल जानी चाहिए। क्या है आखिर पार्थ की सच्चाई? अगर आयशा और वशी की मदद से बाहर आईं तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? आप लोग चैप्टर पढ़कर कमेंट किया करो। बाकी कुछ लोगों के चैप्टर नहीं खुल रहे हैं, इस समस्या पर काम किया जा रहा है। वी आर रियली सॉरी कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम जल्द से जल्द आपकी समस्या को हल कर देंगे।